ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी की बाढ़ में फंसे 32 लोगों को SDRF की मदद से सुरक्षित निकाला गया। सरगुजा जिले के मैनपाट में आयोजित भाजपा के सांसद और विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। दंतेवाड़ा जिले में आज 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और छत्तीसगढ़ को जिला खनिज संस्थान न्यास DMF के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई नदी नाले उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। वहीं कई गांवों का जिला मुख्यालयों से सड़क संपर्क टूट गया है। इस बीच कैचमेंट एरिया में बारिश होने और पानी की आवक बढ़ने से जलाशयों का जलस्तर बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री देव शुक्ला ने बताया कि दुर्ग जिले के मोंगरा जलाशय से 8,000 क्यूसेक, घुमरिया से 4,800 क्यूसेक, सूखानाला से 2,600 क्यूसेक और खातू टोला से 600 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके चलते शिवनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं महमरा एनिकट के 7 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए SDRF और DDRF की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। दुर्ग जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि ग्राम थनौद और अंजोरा में शिवनाथ नदी की बाढ़ में फंसे 32 लोगों को SDRF की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
पिछले 2 दिन से काफी भारी बारिश की स्थिति यहाँ पर बन रही थी, जिसके कारण बराज से जो पानी छोड़ा गया था उसको भी सुबह उसका फ्लो कम किया गया और कैचमेंट एरिया का पानी का फ्लो काफी था, तो लगभग 40,000 क्यूसेक के आसपास का यहाँ पर डिस्चार्ज था। हमारा एनिकट में लगभग 8-8.5 फीट ऊपर पानी बह रहा था एनिकट से। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर कुछ इलाकों में हालांकि गांव के बस्ती एरिया में तो नहीं भरा था, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स कुछ उसमें फंस गए थे। एक जगह पर 32 करीब लेबरर्स थे, तो उनको SDRF की टीम द्वारा मौके पर जाकर के वहाँ पे बोट के माध्यम से उनको रेस्क्यू किया गया है। सभी लेबरर्स की कंडीशन ठीक थी, कोई उनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत नहीं थी, तो उसके बाद ये रेस्क्यू करने के बाद वो लोग अपने सुरक्षित ठिकाने पर चले गए हैं।
वहीं सक्ती जिले के अंडा गांव के बगान नाला में बहे एक व्यक्ति का शव SDRF की टीम ने 36 घंटे बाद बरामद कर लिया है। उधर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में भी कई नदी नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर ने जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कल 10 जुलाई को अवकाश घोषित किया है।
मोहला मानपुर जिले में करीब एक पखवाड़े से हो रही लगातार बारिश ने जहां जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नालों का जलस्तर इस कदर बढ़े हुए हैं कि बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। बिगड़े हालात के मद्देनजर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कलेक्टर ने स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। मोहला मानपुर जिले को रेड अलर्ट में रखा गया है। जिले के समस्त शासकीय व अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में 9 जुलाई से 10 जुलाई तक 2 दिवस का अवकाश घोषित किया गया है। आकाशवाणी के लिए मोहला मानपुर जिले से प्रमोद निर्मल की रिपोर्ट।
इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है।
अभी फिलहाल जो अलग अलग मौसमी तंत्र बने हैं, इसमें 3 है। एक लो प्रेशर एरिया है जो गंगेटिक पश्चिम बंगाल के ऊपर में है, एक मानसून द्रोणिका है अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ा सा दक्षिण की तरफ है, साथ ही एक द्रोणिका बना हुआ है जो अरब सागर से लेकर के निम्न दाब के केंद्र तक है। तो ये तीनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण से अगले 24 घंटे में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। भारी वर्षा का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से मध्य छत्तीसगढ़ यानी कि बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के जिले संभावित हैं।
सरगुजा जिले के मैनपाट में आयोजित भाजपा के सांसदों और विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। शिविर के अंतिम दिन पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने सांसदों और विधायकों को पार्टी की रीति नीति, अनुशासन, जनसेवा और नेतृत्व की जानकारी दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में कुल 12 सत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर से सांसदों और विधायकों की दक्षता तथा कुशलता बढ़ेगी।
भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण हमारा यह है जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से हमारे आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण की ये 3 दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हुई है। यह जो प्रशिक्षण वर्ग है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, कार्य योजना, कार्यक्रम और उसका एक अभिन्न अंग है। ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, मैं आने वाले समय में चाहे संगठन के विषय को लेकर हो, चाहे व्यक्तित्व निर्माण, कार्यकर्ता के निर्माण की दृष्टि से पदाधिकारी के दायित्व में उनके कार्यबोध, कार्य योजना, कार्यक्रम किस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी में उनकी भूमिका, इन सारे विषयों को लेकर यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र समापन हुआ है।
शिविर के समापन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में यह प्रशिक्षण शिविर मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले आज सुबह योग सत्र में विधायक अजय चंद्राकर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संघर्षों और उनके आदर्शों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लखपति दीदी बनाने की दिशा में विषय पर आज से रायपुर में 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला शुरू हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने इस कार्यशाला का शुभारंभ वर्चुअल रूप से किया। यह कार्यशाला दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सहित बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारी, मिशन संचालक, आजीविका विशेषज्ञ और स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि लखपति महिला पहल नारी सशक्तिकरण के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कड़ी बनेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव टीके अनिल कुमार ने कल राजनांदगांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं और विकास गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मिशन जल रक्षा, वन स्टॉप फैसिलिटी और चना प्रोसेसिंग यूनिट सहित कई योजनाओं की जानकारी ली। दंतेवाड़ा जिले में आज 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि इनमें से 9 माओवादियों पर कुल 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, इन पर अगर कुल इनाम राशि देखी जाए तो लगभग 28 लाख रुपए है। इसमें 30 वर्ष से अधिक माओवादी संगठन में सक्रिय DVCM रैंक के पश्चिम बस्तर डिवीजन के चंद्रन्ना पुणे में जो तारलागुड़ा, कुरचोली जैसे, पूर्ववाड़ा जैसे मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट इसमें सक्रिय थे। लगभग 30 वर्ष से वो सक्रिय थे नक्सल संगठन में, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है।
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की नई पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। छत्तीसगढ़ को जिला खनिज संस्थान न्यास DMF के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आज नई दिल्ली में आयोजित नेशनल DMF वर्कशॉप के दौरान केंद्रीय कोला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के प्रयासों को मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और अन्य राज्यों को भी डेटा अपलोडिंग, पारदर्शिता और जमीनी क्रियान्वयन के अनुकरण की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सरगुजा जिले के मैनपाट में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना से मैनपाट शांति और समावेशी संस्कृति की नई पहचान बनेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बौद्ध परंपरा की जड़ें अत्यंत गहरी हैं और भगवान बुद्ध के प्रेम, शांति और करुणा के संदेश को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के तहत सहकारिता विभाग ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर छत्तीसगढ़ में 1,00,000 पौधों का रोपण किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में 1 से 6 जुलाई तक विभिन्न कार्यक्रमों, शिविरों, संगोष्ठियों और पौधारोपण का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान लोगों ने पौधों की सुरक्षा करने का भी संकल्प लिया। हज समिति ने हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज यात्री आधिकारिक हज पोर्टल या हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऑनलाइन आवेदन विंडो 31 जुलाई तक खुली रहेगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करने राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक 16 से 21 जुलाई तक नारायणपुर और 22 से 26 जुलाई तक कोंडागांव जिले का दौरा करेंगे। और कबीरधाम जिले के ग्राम भल्लीम दादर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बैगा महिलाओं की मौत हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी की बाढ़ में फंसे 32 लोगों को एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित निकाला गया। सरगुजा जिले के मैनपाट में आयोजित भाजपा के सांसद और विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। दंतेवाड़ा जिले में आज 12 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। और छत्तीसगढ़ को जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।